नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
अभिमन्यु मर गया, पांडव लोग दुखी हो गए, अर्जुन युद्ध करता हुआ आया, अर्जुन के हृदय में पहले ही ऐसे अपशकुन हो गए। कृष्ण भगवान से कहा कि मुझे ऐसा लगता है हमारे सेना में से कोई बहुत बड़ा योद्धा चला गया, कहीं युधिष्ठिर जी तो नहीं चले गए, बंदी तो नहीं बना लिए, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य उनको बंदी बनाना चाहते थे। भगवान कृष्ण ने कहा कि युधिष्ठिर का कुछ नहीं बिगड़ा है, निश्चिंत रहो, कोई दूसरा ही अनिष्ट हुआ है। इतने में ही अपने शिविर में आए, पता चला अभिमन्यु मारा गया, सारी घटनाओं का ज्ञान हुआ। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि कल सूर्य के अस्त होने से पहले पहले इस जयद्रथ को मैं मारूंगा। और दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि यदि मैं कल नहीं मार सका तो अग्नि में प्रवेश करूंगा। यह प्रतिज्ञा करके उसने कई सौगंध खाई। लोग कहते हैं, आक्षेप करते हैं कि गीता सुन लिया अर्जुन ने, फिर बेटे के मरने का दुख क्यों हुआ, शोक क्यों हुआ? और यदि शोक हो गया तो फिर गीता पढ़ने का लाभ क्या हुआ? पर ये नहीं कहते कि देखो उसने कितनी कितनी शास्त्र की बात कही है। ये आपने परसों सुनाई था, यदि ऐसा न हो, यदि ऐसा न करूं, यदि ऐसा न करूं, इसको ऐसा न करूं, ये धर्म न हो, उसको जो पाप लगता है वो पाप मेरे को लगेगा। तो शोक होता है वहां पर बुद्धि काम नहीं करती, बुद्धि शोकेन नश्यति, लेकिन अर्जुन की बुद्धि खूब काम कर रही है। फिर अर्जुन शोक क्यों करते हैं? अर्जुन शोक इसलिए करते हैं दिखाने के लिए कि द्रौपदी है, सुभद्रा है, उत्तरा है, ये शोक नहीं करें। बड़े पुरुष कभी कभी विचित्र लीला करते हैं, इसीलिए देखो अब आगे क्या होता है वो सुनिए। संजय कहते हैं, हे महाराज धृतराष्ट्र, अर्जुन ने इस प्रकार जयद्रथ को मारने की प्रतिज्ञा की। गुप्तचरों के द्वारा जयद्रथ को अर्जुन की प्रतिज्ञा का ज्ञान हो गया। ये बात सुनते ही जयद्रथ शोक से विवल हो गया। वो एक जगह खड़ा होकर चुपचाप सन्न हो गया, घबरा गया। फिर उसके बाद वो रातों रात अपने पक्ष के राजाओं की सभा में गया और वहां जाकर फूट फूट करके रोने लगा, बिलखने लगा। और अर्जुन से डर जाने के कारण उसने लजाते लजाते कामण बड़ो लाज में कहा, राजाओं ये पांडवों के शिविर में जो हर्षद ध्वनि हो रही है उसको तुम ध्यान से सुनो, मुझे बड़ा भय लग रहा है। मरणासन्न मनुष्य के भांति मेरा सारा शरीर शिथिल हो गया है। निश्चय अर्जुन ने मेरे वध करने की प्रतिज्ञा की है, तभी तो सुनो, अभिमन्यु जैसा योद्धा मर गया फिर भी शोक के समय पांडव कैसा हर्ष मना रहे हैं। यदि ऐसी बात है तो अर्जुन की प्रतिज्ञा को देवता, गंधर्व, असुर, नाग, राक्षस कोई भी झुठला नहीं सकते। फिर आप लोगों में तो कोई ऐसा है भी नहीं। आप लोगों का भला हो, मुझे यहां से रातों रात कहीं जाकर छिप जाने की आज्ञा दीजिए। मैं यहां से जाना चाहता हूं, ऐसी जगह जाकर छिप जाऊंगा जहां पांडव लोग मुझे किसी प्रकार देख नहीं सकेंगे। जयद्रथ को इस प्रकार से व्याकुल होते हुए विलाप करते हुए देखकर दुर्योधन ने कहा, हे पुरुषश्रेष्ठ, इतने भयभीत होते हो? युद्ध में कोई भी क्षत्रिय कुछ भी अपने पौरुष को लेकर बोलता है तो वो सच थोड़ा ही होता है। युद्ध में संपूर्ण क्षत्रिय वीरों के बीच में तुम रह रहे हो और अर्जुन तुमको हम में से उठा लेगा, तुमको मार देगा, असंभव। मैं बैठा कर्ण है, चित्रसेन है, विभिन्शति है, भूरिश्रवा, शल, शल्य, वृषेन, पुरुमित्र, जय, भूद, सुदक्षिण, सत्यव्रत, विकर्ण, दुर्मुख, दुशासन, सुबाहु, कलिंगराज, विंद, अनुविंद, द्रोण, अश्वत्थामा, शकुनी तथा और भी बहुत से राजा लोग अपनी सेना के साथ तुम अकेले की रक्षा करेंगे। क्या आप ऐसा सोचते हो जयद्रथ जी कि इतनों को मार करके अर्जुन आपको मार देगा? मन की चिंता को दूर करो सिंधुराज, तुम स्वयं भी तो एक श्रेष्ठ महारथी हो, शूरवीर हो। पांडवों से डरते हो? सार मेरी सारी सेना तुम्हारी रक्षा के लिए सावधान रहेगी, तुम अपना भय निकाल दो। इस प्रकार दुर्योधन ने आश्वासन दिया और उसी समय रात्रि में जयद्रथ को साथ में लेकर गुरु द्रोणाचार्य के शिविर में गए। आचार्य के चरणों में प्रणाम करके जयद्रथ ने पूछा, हे भगवान, मैं आपसे बहुत विनम्रता से घबरा करके एक बात पूछता हूँ। जब धनुष बाण लेकर हम युद्ध में खड़े होते हैं तो मेरे में फुर्ती ज्यादा है, निशाना लगाने में मेरी विद्या अचूक है या अर्जुन? हम दोनों में से श्रेष्ठ योद्धा कौन है? द्रोणाचार्य का, जयद्रथ घबराओ मत, तुम्हारे और अर्जुन के हम दोनों एक ही आचार्य, मैं तुम दोनों का एक ही आचार्य हूँ। फिर भी अभ्यास में, फुर्ती में और क्लेश सहन करने में, पैंतरों को जानने में, शस्त्रों को चलाने में, चलाए हुए शस्त्र को काटने में और अमोक शस्त्रों से भी बचने में जो फुर्ती, जो ज्ञान, जो चंचलता अर्जुन में है वो तुम्हारे में बिल्कुल नहीं। परंतु डरने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि तुम जो शक्ति चाहते हो सब मेरे पास है। मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मेरी भुजाएं जिसकी रक्षा के लिए खड़ी हो जाए उस पर देवताओं का जोर नहीं चलता। जयद्रथ, कल ऐसा व्यूह बनाऊंगा अर्जुन तो वहां पहुंच ही नहीं सकेंगे और सूर्य कहीं का कहीं पहुंच जाएगा। डरो मत, उत्साह करो, तुम्हारे जैसे वीर को तो मृत्यु का डर होना ही नहीं चाहिए जयद्रथ। क्योंकि तपस्वी लोग तप करने पर जिन ऊंचे लोगों को प्राप्त होते हैं, क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेने वाले वीर पुरुष भी उसी लोक को अनायास प्राप्त कर लेते हैं। द्रोणाचार्य के द्वारा आश्वासन मिल गया, जयद्रथ का भय दूर हुआ, उसने बाहर जाकर छिपने का विचार छोड़ दिया, युद्ध का विचार किया और उस समय कौरव सेना में बड़ी हर्षद ध्वनि होने लगी। इधर अर्जुन ने जब प्रतिज्ञा कर ली तो भगवान ने अर्जुन से पूछा, अरे धनंजय, ये क्या कर लिया तुमने? न तो भाइयों की सम्मति ली, न मुझसे कोई सलाह ली, फिर भी तुमने लोगों को सुनाकर जयद्रथ के मारने की प्रतिज्ञा कर डाली। ये तुम्हारा कैसा दुस्साहस है? किसके बल पर ऐसा किया? और यदि कल सूर्यास्त से पहले जयद्रथ को नहीं मार सके तो किसकी हंसी होगी? क्या लोग हम पर हंसी नहीं उड़ाएंगे? एक तरफ अभिमन्यु मरा हुआ है, दूसरी तरफ तुम ऐसी प्रतिज्ञा करते हो। यदि प्रतिज्ञा ही करनी थी अर्जुन, तो तुमको अपने मन में रखनी थी, मुझे अकेले को बतानी थी। तुम्हारी ये प्रतिज्ञा कौरवों की छावनी में पहुंच चुकी है और मेरे गुप्तचरों ने जाकर वहां से समाचार दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अर्जुन ने जब से सिंधुराज की वध की प्रतिज्ञा की है, सिंधुराज कह दो जयद्रथ कह दो एक ही बात, सिंधु देश का राजा था, जब से सिंधुराज ने जब से अर्जुन ने सिंधुराज के वध की प्रतिज्ञा की है, तब से कौरवों की पांडवों की सेना की रणभेरी और सिंहनाद हुआ, तब से कौरवों के अंदर भय छा गया। जयद्रथ उदास होकर दुर्योधन के पास गया। दुर्योधन जयद्रथ को लेकर द्रोणाचार्य के पास पहुंचा और आचार्य द्रोण ने कहा कि देखो घबराने की जरूरत नहीं है, मेरा ऐसा विश्वास है गुरुदेव कि कृष्ण की सहायता पाकर अर्जुन देवताओं सहित तीनों लोगों को नष्ट कर सकता है, कैसे न घबराऊं, इसलिए मैं यहां से चले जाने की आज्ञा चाहता हूं। यदि आप और अश्वत्थामा मुझे रक्षा का आश्वासन दो तो मैं ठहर सकता हूं। तब द्रोणाचार्य ने जयद्रथ का पूरा प्रबंध कर लिया है, मेरे गुप्तचरों ने बताया है कि कल कर्ण भूरिश्रवा अश्वत्थामा वृषिम कृपाचार्य और शल्य ये छह महारथी जयद्रथ के पास, और द्रोणाचार्य व्यूह बनाकर अगला हिस्सा शकट व्यूह के आकार का, पिछला कमल के समान व्यूह का और मध्य में कर्णिका के सूची के समान ये जयद्रथ वहां खड़ा रहेगा। वहां तक पहुंचना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल होगा, आप सोचो अर्जुन, ये छह महारथी फिर उसके पास आएंगे। अपना हित का तो ध्यान रखना चाहिए था, राजनीतिक मंत्रियों से सलाह तो करना चाहिए था। अर्जुन आवेश में आकर ऐसी प्रतिज्ञा कर ली। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, मधुसूदन मेरे में किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है, मुझे किसी प्रकार से आपकी कृपा का कहीं पर भी संदेह नहीं है। कौरवों के जिन महारथियों को आप बल में अधिक मानते हैं उनका पराक्रम मैं अपने से आधा भी नहीं समझता। कृष्ण यदि साध्य रुद्र वसु अश्विनी कुमार इंद्र वायु विश्वदेव गंधर्व पितर गरुड़ समुद्र पृथ्वी दिशाएं दिक्पाल गांवों के लोग जंग जीव संपूर्ण चराचर की प्राणी सिंधुराज की रक्षा के लिए आ जाएं तो मैं सत्य और आयुधों की सौगंध खा के कहता हूं कल आप जयद्रथ को मेरे बाणों से मरा हुआ देखेंगे। मैंने बेहोशी में प्रतिज्ञा नहीं की, मैंने यम कुबेर वरुण इंद्र और रुद्र से भी भयंकर अस्त्र प्राप्त किए हैं, उन्हें कल के युद्ध में लोग देखेंगे। जयद्रथ के रक्षक जो जो भी शस्त्र छोड़ेंगे उन्हें मैं ब्रह्मास्त्र से काटूंगा। केशव कल का युद्ध इतिहास बनेगा, राजाओं की मस्तक पृथ्वी पर बिछ जाएंगे या आपके सामने होंगे। गांडीव जैसा दिव्य धनुष जिसके पास हो और आप जैसा सारथी हो, क्या वो कभी युद्ध में पराजित हो सकता है? केशव आप अपनी कृपा को क्यों भूले बैठे हो? इस कृपा से क्या मैं युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकता? आप तो जानते हैं कि मेरा वेग आपकी कृपा के कारण शत्रु भी सहन नहीं कर सकते, फिर आप मुझे लज्जित क्यों करते हैं और अपनी कृपा को आप क्यों छिपाए बैठे हैं? ब्राह्मणों में सत्य, साधुओं में नम्रता और यज्ञों में लक्ष्मी का होना जैसा निश्चित है, ब्राह्मण होगा सत्य बोलेगा, असली साधु होगा तो नम्र होगा सरल होगा और पवित्र भाव से जहाँ यज्ञ किया जाएगा वहाँ पर लक्ष्मी प्रकट होगी। ये तीनों बात सत्य है। उसी प्रकार जहाँ नारायण हो वहाँ विजय भी निश्चित है। मैं तो आपसे इतनी प्रार्थना करता हूँ, कल सवेरा होते ही मेरा रथ इस प्रकार से तैयार किया जाए, ऐसा प्रबंध किया जाए कि जिसमें कल मेरी प्रतिज्ञा पूरी हो। अर्जुन ने कृष्ण से आगे कहा, हे भगवान, आप इस समय सुभद्रा के पास और उत्तरा के पास जाओ, उनके शोक को दूर करो और उन्हें बताओ कि मैं अब क्या करने जा रहा हूं। कृष्ण बड़े उदास होकर अर्जुन के शिविर में गए। पुत्र शोक से पीड़ित अपनी दुखिनी छोटी बहन को बड़े प्रेम से छाती से लगाकर कहने लगी, बहन तुम और बहू उत्तरा दोनों शोक कर रही हो, एक वीर पत्नी है और एक वीर माता है। वीर पत्नी और वीर माता के लिए ये परीक्षा की घड़ी होती है बहन। काल के द्वारा सभी प्राणियों का एक न एक ये दिन आने वाला है। तुम्हारा पुत्र उच्च वंश में उत्पन्न धीर वीर क्षत्रिय, वह मृत्यु उसके योग्य हुई है, इसलिए मृत्यु का शोक त्याग दो। मृत्यु के लिए वही शोक करो जहां व्यक्ति अपने कर्तव्य से च्युत हो जाता है, संसार में राग रखता है, परिवार में मोह रखता है, भगवान का स्मरण नहीं करता है, हाय त्राई करता मरता है, उसकी मृत्यु शोकदायक तो उसकी मृत्यु शोक करने योग्य होती है। अभिमन्यु जैसा भी बड़े बड़े संत पुरुष तपस्या के द्वारा, ब्रह्मचर्य के द्वारा, शास्त्र ज्ञान के द्वारा, सद्गति के द्वारा जिस गति को प्राप्त करना चाहते हैं वो गति तुम्हारे पुत्र को मिली है। तुम वीर माता हो, वीर पत्नी हो, वीर कन्या हो और वीर की बहन हो, इसलिए कल्याणी तुम्हारे पुत्र को उत्तम गति निश्चित रूप से प्राप्त हुई है। उसकी गति पर विचार करो, उसके अभाव पर विचार। बालक की हत्या करने वाला पापी जयद्रथ यदि अमरावती में जाकर भी छिपेगा तो भी अर्जुन के हाथ से कल उसका छुटकारा होने वाला नहीं है। कल सूर्यास्त के बाद तुम यही सुनोगी कि जयद्रथ का मस्तक कटकर समंत पंचक क्षेत्र से बाहर जा गिरा है। शूरवीर अभिमन्यु ने क्षत्रिय धर्म का पालन करके सत्पुरुषों की गति पाई है और कल जयद्रथ पापियों की गति को प्राप्त होगा। रानी बहन चिंता छोड़ो और बहू को धीरज दो। अर्जुन ने जैसी प्रतिज्ञा की है मैं तुम्हें सत्य कहता हूं, कल उसकी प्रतिज्ञा पूर्णतः सत्य होने वाली है, उसे कोई पलट नहीं सकता। तुम्हारे स्वामी जो कुछ करना चाहते हैं वो कभी निष्फल नहीं होता। यदि मनुष्य नाग पिशाच राक्षस पक्षी देवता असुर भी उसके सामने आ जाए और वे भी जयद्रथ की रक्षा करें तो कल वह किसी हालत में जीवित नहीं रह सकता। सुभद्रा फूट फूट के रोने लगे, बहुत विलाप करने लगे और कृष्ण को पकड़ करके कहने लगी, कृष्ण क्या करूं, पुत्र का शोक हृदय से निकलता नहीं है। हे बेटा अभिमन्यु, तुम्हारे बिना आज मैं मंद भागिनी हो गई, मैं मरती तू रोता तो ये संसार का एक विधान बनता, लेकिन तू मर गया तेरे पीछे मैं रोती हूं, ये कौन सा दिन आया है। अपने पिता के समान पराक्रमी होकर तुम युद्ध में मारे कैसे गए, तुम्हें अनाथ के भांति किसने मारा, तुम्हें देखने के लिए मैं बहुत तरसती रह गई। आज भीमसेन के बल को धिक्कार, अर्जुन के गांडीव धनुष को पराक्रम को धिक्कार, कई कई चेदी मत्स्य और सिंजियों को धिक्कार, जो मेरे बच्चे की रक्षा नहीं कर सके। आज सारी पृथ्वी सुनी और श्रीहीन हो गई, मेरी शोकाकुल आंखें अभिमन्यु को ढूंढती तो है पर मिलता नहीं है। हाय, श्री कृष्ण का भांजा होकर, गांडीवधारी अर्जुन का पुत्र होकर तुम रणभूमि में मरे हुए पड़े होने हो, मैं कैसे तुम्हें देख सकूंगी बेटा? मैं क्या सुन रही हूं? कहां हो? आओ मेरी गोद में बैठो, ये अभागिनी माता तुम्हें देखने के लिए तरस रही है। वीर, तुम सपने की संपत्ति के समान दर्शन देकर कहां छिप गए? ये मनुष्य जीवन पानी के बुलबुले के समान कितना चंचल है। बेटा, तुम असमय में ही चले गए, तुम्हारी तरुण पत्नी शोक में डूबी हुई है, मैं स्वयं शोक में डूबी हुई इसको कैसे धीरज बना सकती हूं? काल की गति को जानना विद्वानों के लिए कठिन है। तभी तो कृष्ण जैसे सहायक के जीते जी तुम अनाथ के भांति मारे गए। कृष्ण के भांजे होकर, कृष्ण के खास संबंधी होकर तुम्हारी ये दशा। यज्ञ और दान करने वाले आत्मज्ञानी ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, पुण्य तीर्थों का सेवन करने वाले कृतज्ञ, उदार गुरु सेवक तथा हजारों गौदान करने वालों को जिस गति की प्राप्ति होती है वो तुम्हें मिले। पतिव्रता स्त्री, सदाचारी राजा, दीनों पर दया करने वाले, किसी की भी निंदा और चुगली न करने वाले, धर्मशील, व्रती और अतिथि सत्कार करने वाले लोगों को जो गति मिलती है वो तुम्हें प्राप्त हो। बेटा, आपत्ति और संकट के समय जो भी धैर्य पूर्वक अपने को संभाल लेते हैं, सदा माता पिता की सेवा करते हैं और अपनी स्त्री से संतुष्ट रहते हैं, उनकी जो गति होती है वो तुम्हारी हो। जो मात्सर्य से रहित है, सब प्राणियों को सांत्वनापूर्ण दृष्टि से देखते हैं, जिनके अंदर क्षमा भाव है, किसी को चोट पहुंचाने वाली बात नहीं कहते, जो मद्य मांस मद दम्भ और मिथ्या से दूर रहते हैं, दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, जिनका स्वभाव संकोची होता है, जो संपूर्ण शास्त्र की ज्ञाता ज्ञानानंद में परिपूर्ण और जितेंद्रिय हैं, उन पुरुषों की जो गति होती है, बेटा एक माँ तुमको यही आशीर्वाद देती है कि वो तुम्हारी गति हो। इस प्रकार शोक से दुर्बल और दीन भाव से विलाप करती हुई सुभद्रा बैठी है, उसी के पास द्रौपदी और उत्तरा भी आ गई। अब तो दुख की कोई सीमा नहीं रही, सब फूट फूट कर रोने लगे, उन्मत्त की तरह पृथ्वी पर गिरकर बेहोश होने लगे। उन सब की दशा देखकर भगवान दुखी हो गए और उन्हें होश में लाने की तरकीब करने लगे। उन्होंने जल छिड़का और सचेत किया, सुभद्रे विचार करो, तुम्हारे इस शोक से लाभ क्या होगा? द्रौपदी, उत्तरा को धीरज दो, अभिमन्यु एक बहुत बड़ी उत्तम गति को प्राप्त हुआ है, उसके लिए शोक ये आपके लिए ठीक नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि हमारे वंश में जो श्रेष्ठ पुरुष हैं वे सब यशस्वी अभिमन्यु की गति प्राप्त करें। यदि आज अभिमन्यु के समान हमारे और भी योद्धा इस गति को प्राप्त हो तो हमें बहुत आनंद मनाना चाहिए। तुम्हारी महारथी पुत्र ने अकेले जो काम करके दिखाया है वही हम और हमारे सब सुहृद भी करें और उसी गति को प्राप्त हो। इस प्रकार सुभद्रा को, द्रौपदी को, उत्तरा को बहुत प्रेम से, ज्ञान से, स्नेह से आश्वासन देने के बाद भगवान कृष्ण पुनः अर्जुन के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ और रात्रि को सो जाओ, बहुत रात हो गई, मैं भी जाता हूँ। यह कहकर भगवान कृष्ण ने अर्जुन के शिविर पर अपने द्वारपालों को खड़ा कर दिया, कई शस्त्रधारी रक्षक तैनात कर दिए और अपने सारथी दारू को साथ में लेकर अपने रथ में बैठकर अपनी छावनी में चले गए और वहां जाकर अपने शयन कक्ष में बैठे रहे और विचार करते रहे। थोड़ी देर लेट भी गए शैया पर, फिर भी उनका विचार चल रहा है। थोड़ी सी नींद की झपकी आई, आधी रात के समय अकस्मात उनकी नींद टूटी और अर्जुन की प्रतिज्ञा फिर याद आई और उन्होंने दारुक कहा, जगाया और कहा, दारुक पुत्र शोक से व्यथित होने के कारण अर्जुन ने ये प्रतिज्ञा तो कर डाली है कि मैं कल जयद्रथ का वध करूंगा, परंतु दारुक मुझे बड़ी चिंता हो रही है, जिसकी रक्षा में द्रोण हो वहां इंद्र भी क्या कर सकते हैं, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आता है। मैं ऐसी व्यवस्था करना चाहता हूं जिससे अर्जुन सूर्यास्त होने के पहले जयद्रथ को मार डाले। दारुक तुम मेरे विश्वास पात्र हो, इसलिए मैं तुम्हें आज हृदय की बात कहता हूं। मेरे लिए स्त्री, मित्र, भाई, बंधु कोई भी कुंती नंदन अर्जुन से बढ़कर प्रिय नहीं है और न ही कोई प्रिय हो सकता है। इस संसार को अर्जुन के बिना एक क्षण भी नहीं देख सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि अर्जुन नहीं और मैं हूं। अर्जुन के लिए मैं कर्ण को, दुर्योधन को, सारे महारथियों को, उनके घोड़ों को और हाथियों को, सबको मार डालूंगा। कल सारी दुनिया को इस बात का परिचय दिया जाएगा कि मैं अर्जुन का कैसा मित्र हूं। जो अर्जुन से द्वेष रखता है वो मुझसे रखता है, और जो अर्जुन के अनुकूल है वो मेरे भी अनुकूल है। तुम अपनी बुद्धि में इस बात का निश्चय कर लो कि अर्जुन मेरा आधा शरीर है, सवेरा होते ही मेरा रथ सजा कर तैयार करना, उसमें मेरे सुदर्शन चक्र, कौमुद की गदा, दिव्य शक्ति, शार्ंग धनुष के साथ सभी आवश्यक सामग्री रख लेना, घोड़े जोत कर प्रतीक्षा करना, जो ही मेरे पांच जन्य की ध्वनि तुमको सुनाई दे, मैं अर्जुन का रथ हांकता हुआ भी मेरे पास मेरा देखूंगा और तुम उस रथ का बराबर संचालन करोगे। हो सकता है अर्जुन पर कभी विपत्ति आए तो मैं इस रथ को छोड़कर तुम्हारे रथ में बैठकर अपनी संपूर्ण शक्तियों को काम में लेकर जयद्रथ का वध मैं करूंगा। अर्जुन जिस वीर का वध का प्रयत्न करेंगे वहां वहां उनकी अवश्य विजय होगी। दारुक ने कहा, हे पुरुषोत्तम, आप जिसके सारथी हैं उसकी विजय तो निश्चित है, पराजय हो ही नहीं सकती है। अर्जुन के विजय के लिए आप मुझे जो कुछ आज्ञा दे रहे हैं, कल सवेरा होते मैं उसे पूर्ण करूंगा और आपके रथ के साथ साथ बराबर में मैं इस रथ को आपके साथ रखूंगा। संजय कहते हैं, अर्जुन तो अपनी प्रतिज्ञा की रक्षा के विषय में कुछ विचार करते करते सो गए। उन्हें चिंता करते जान स्वप्न में ही भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिया। अब अर्जुन सपना देखता है, भगवान को देखते ही अर्जुन उठे और बैठने को आसन दे स्वयं चुपचाप खड़े रहे। ये सपना है, अर्जुन ने उनका निश्चय जानकर कहा, धनंजय तुम बड़े चिंतित हो। बुद्धिमान पुरुष को कभी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शोक करने से, चिंता करने से बनता हुआ काम बिगड़ जाता है और उत्साह रखने से बिगड़ा हुआ काम भी सुधर जाता है। जो करने योग्य कार्य आ पड़े अर्जुन, उसे पूरा करो। उद्योगहीन मनुष्य का शोक तो उसके लिए शत्रु का काम करता है। उद्योगी नहीं करे और कहते बैठे बैठे शोक करे तो वो शत्रु का काम करता है। शोक शत्रु का काम करता है। स्वप्न में ही भगवान के ऐसा कहने पर अर्जुन ने कहा, केशव मैंने कल अपने पुत्र के घातक जयद्रथ को मार डालने की भारी प्रतिज्ञा कर दी है, किंतु सोचता हूं मेरी प्रतिज्ञा तोड़ने के लिए कौरव सेना, कर्णादि योद्धा, द्रोणाचार्य ये सब जयद्रथ को सब के पीछे खड़ा करेंगे और एक ही दिन में सभी मारथियों को मारने के बाद, या यूं कहूं कि 11 अक्षुणी सेना के मारने के बाद जयद्रथ को मारने का नंबर आए, जयद्रथ का वहां दिखाई देना ही नहीं है, फिर प्रतिज्ञा का पालन कैसा होगा? प्रतिज्ञा भंग हो जाने पर मुझ जैसा मनुष्य संसार में जीवित भी कैसे रहेगा? सारा उपाय केवल दुख देने वाला है, इसलिए मेरी आशा निराशा के रूप में बदलती जा रही है केशव। इसके लिए आजकल सूर्य जल्दी अस्त हो जाता है, इन्हीं सब कारणों से मैं आपको बोल रहा हूं कि कल क्या होगा। स्वप्न में अर्जुन को शोक का कुल देखकर और ये शोक की बातें सुनकर स्वप्न में ही कृष्ण ने कहा, अर्जुन देखो शंकर जी के पास एक पाशुपत नाम का अस्त्र है, सनातन अस्त्र है, जिससे उन्होंने पूर्व काल में संपूर्ण देवताओं का संहार किया था। यदि तुम्हें उस अस्त्र का ज्ञान हो तो अवश्य ही कल जयद्रथ का वध कर डालोगे, और यदि उसका ज्ञान नहीं हो तो अभी समय है अर्जुन, तो मनी मन शंकर का ध्यान करो। ऐसा करने पर उनकी कृपा से वो महान पाशुपतास्त्र तुम्हें मिलेगा और उसके मिल जाने के बाद तुम्हें सब योद्धाओं को एक शस्त्र से मारने की शक्ति मिल जाएगी। स्वप्न में ही भगवान श्री कृष्ण की बात को सुनकर अर्जुन आचमन करके भूमि पर आसन बिछाकर बैठ गए और एकाग्र चित्त से ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, एकाग्र चित्त से शंकर जी का ध्यान करने लगे। तदनंतर उस ध्यान अवस्था में ब्रह्म मुहूर्त में अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ अपने को आकाश में उड़ते हुए देखा। उस समय उनकी वायु के समान गति थी। सब स्वप्न में है, ये जो ब्रह्म मुहूर्त है ना, ये भी स्वप्न में ही है। भगवान कृष्ण उनकी दाहिनी बाह पकड़े चल रहे थे। उत्तर दिशा में आगे बढ़कर उन्होंने हिमालय के पावन प्रदेश और मणिमान पर्वत देखा, जहां दिव्य ज्योति छटक रही थी और सिद्ध तथा चारणगण उनकी सेवा कर रहे थे। मार्ग में अद्भुत भावों को देखते हुए जब आगे बढ़े तो श्वेत पर्वत दिखाई दिया। पास ही कुबेर का बिहार वन था, उसके सरोवर में कमल खिले हुए थे और थोड़ी दूर पर अगाध जल से भरी हुई गंगा लहरा रही थी। उसके तट पर ऋषियों के आश्रम बने हुए थे। उसके आगे मंदराचल के रमणीय प्रदेश दृष्टिगोचर हुए, जहाँ किन्नरों की संगीत में स्वर लहरी छाई हुई थी। इस प्रकार अनेकों दिव्य स्थानों को पार करने के बाद एक परम प्रकाशमान पर्वत दिखाई दिया और उसके शिखर पर भगवान शंकर बड़े आनंद और प्रसन्न मुद्रा में विराजमान थे। जो हजारों सूर्य के समान देदीप्यमान हो रहे थे, उनके हाथ में त्रिशूल था, मस्तक जटाजूट शोभित हो रहा था, गौर शरीर, वलकल वस्त्र, मृगचर्म का वस्त्र लपेटे हुए भगवान भूतनाथ पार्वती देवी के साथ वहाँ विराजमान थे। तेजस्वी भूतगण उनके सेवा में हाथ जोड़े उपस्थित थे। बड़े बड़े ब्रह्मवादी ऋषि मुनि उनकी स्तोत्रों से स्तुति कर रहे थे। उनके पास पहुंचकर भगवान कृष्ण और अर्जुन ने पृथ्वी पर मस्तक टेक कर प्रणाम किया। उन दोनों नर और नारायण को आता हुआ देख भगवान शिव बड़े प्रसन्न हुए और हंसते हुए बोले, हे वीरवरों, तुम दोनों का यहाँ खूब स्वागत है। आओ बैठो, विश्राम करो और जल्दी बताओ आप लोगों की क्या इच्छा है। तुम किस काम के लिए मेरे पास आए हो? हे नर और नारायण, मैं तुम्हारे उस इच्छा को, मनोरथ को अवश्य पूर्ण करूंगा। भगवान शिव की बात सुनकर श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों हाथ जोड़े खड़े हो गए, उनकी स्तुति करने लगे और कहने लगे, हे भगवान, आप ही भव, शर्व, रुद्र, वरद, पशुपति, उग्र, कपर्दी, महादेव, भीम, त्र्यंबक, शांति और ईशान आदि नामों से प्रसिद्ध है। आपको हम बारंबार नमस्कार करते हैं। आप भक्तों पर दया करने वाले हैं। प्रभु, हमारा कुछ मनोरथ है, उसे आप सिद्ध कीजिए। तदनंतर अर्जुन ने मनी मन भगवान शिव और कृष्ण का पूजन किया तथा शंकर जी से कहा, हे भगवान, मैं दिव्य अस्त्र चाहता हूं। ये सुनकर भगवान शंकर मुस्कुराए और कहने लगे, श्रेष्ठ पुरुषों, मैं तुम दोनों का स्वागत करता हूं। तुम्हारी अभिलाषा मुझे मालूम है। तुम जिसके लिए आए हो वो वस्तु मैं तुमको देना भी चाहता हूं। यहां से निकट एक अमृतमय सरोवर है, उसमें मैंने अपने दिव्य धनुष और बाण रख दिए हैं। वहां जाकर बाण सहित तुम धनुष ले आओ। बहुत अच्छा कहकर दोनों वीर शिवजी के पार्षदों के साथ उस सरोवर पर गए। वहां जाकर उन्होंने दो नाग देखे। नाग एक सूर्य मंडल के समान प्रकाशमान था तथा दूसरा हजार मस्तक वाला था। उसके मुख से आग की लपटें निकल रही थी। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन उस सरोवर के जल का आचमन करके उन नागों के पास स्थित हुए और हाथ जोड़कर शिव जी को प्रणाम करते हुए शतरुद्रीय का पाठ करने लगे। तब भगवान शंकर के प्रभाव से वे दोनों महानाग अपना स्वरूप छोड़कर वे ही धनुष बाण हो गए। वो धनुष बाण के रूप में नाग ही थे, स्तुति करती धनुष बाण हो गए। इससे वे दोनों बड़े प्रसन्न हुए और देदीप्यमान धनुष बाण को लेकर भगवान शंकर के पास आए। वहां आकर उन्होंने वे अस्त्र शंकर जी को अर्पण कर दिए। तब भगवान शंकर की पसली में से एक ब्रह्मचारी निकला, या पसली में से उसने वीरासन से बैठकर उस धनुष को उठा लिया और उस पर बाण चढ़ाकर उसे खींचा। अर्जुन ये सब बड़े ध्यान से देख रहा था। उस समय शिवजी ने जो मंत्र पढ़ा उसने वो याद कर लिया अर्जुन। तब उस ब्रह्मचारी ने उन धनुष बाण को पुनः सरोवर में फेंक दिया। भगवान शंकर प्रसन्न हो गए और पाशुपत नाम का घोर अस्त्र अर्जुन को दे दिया। मंत्रात्मक था, उसको पाकर अर्जुन के हर्ष की सीमा नहीं रही। शरीर में रोमांच हो गया। अब वे कृतकृत्य हो गए। फिर कृष्ण और अर्जुन दोनों शिवजी को प्रणाम करके उनसे आज्ञा लेकर अपने शिविर में चले आए। हे महाराज, ये सब अर्जुन ने स्वप्न में देखा था। संजय कहते हैं, धृतराष्ट्र, इधर श्री कृष्ण और दारुक बातें करते ही रहे। देखो भगवान इधर तो दारुक से बातें कर, उधर स्वप्न में कहां के कहां ले गए। इतने में ही रात बीत गई, दूसरी ओर राजा युधिष्ठिर भी जग गए, सब उठकर स्नान वगैरह किए, श्वेत वस्त्र पहने, 108 युवा स्नातक जल से भरे हुए सोने के घड़े ले आए। युधिष्ठिर एक महीन वस्त्र पहनकर श्रेष्ठ आसन पर बैठ गए और मंत्र पूत जल से स्नान करवाया, स्नान करने लगे। स्नान पूजन आदि से निवृत्त होकर बैठे ही थे कि द्वारपाल ने आकर खबर दी, महाराज भगवान श्री कृष्ण पधार रहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा अच्छा इस समय, अच्छा स्वागत पूर्वक लाओ। भगवान श्री कृष्ण को एक दिव्य आसन पर विराजमान किया, राजा युधिष्ठिर ने पूजन किया। उसके बाद अन्य दरबारी लोगों के आने की सूचना मिली। राजा की आज्ञा से द्वारपाल उन्हें भीतर ले आया। विराट, भीमसेन, धृष्टद्युम्न, सात्यकी, चेदिराज, धृष्टकेतु, द्रुपद, शिखंडी, नकुल, सहदेव, चेकितान, केके राजकुमार, युयुत्सु, उत्तमौजा, युधामन्यु, सुबाहु और द्रौपदी के पांचों पुत्र तथा बहुत से क्षत्रिय महात्मा युधिष्ठिर की सेवा में उपस्थित हो उत्तम उत्तम आसन पर विराजमान हो गए। श्री कृष्ण और सात्यकी एक ही आसन पर बैठे थे। तब राजा युधिष्ठिर ने उन सब के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे भक्तवत्सल, जैसे देवता इंद्र के आश्रय में रहते हैं उसी प्रकार हम लोग आपकी शरण में रहकर युद्ध में विजय और स्थायी सुख चाहते हैं। हे सर्वेश्वर, हमारा सुख और हमारे प्राणों की रक्षा सब आपके अधीन है। आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे हमारा मन आप में लगा रहे और अर्जुन की की हुई प्रतिज्ञा आज सत्य हो जाए। इस दुख रूपी महासागर से आप ही हमारा उद्धार करें। हे पुरुषोत्तम, आपको हमारा बारंबार प्रणाम है। देवर्षि नारद ने आपको पुरातन ऋषि नारायण बताया है। आप ही वरदायक विष्णु हैं, इस बात को आज सत्य करके दिखाई। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन बहुत बलवान है, अस्त्र विद्या की ज्ञाता है, बड़े पराक्रमी हैं, युद्ध में चतुर और तेजस्वी हैं, वे आपके शत्रुओं का निश्चित संहार करेंगे। मैं भी ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे अर्जुन धृतराष्ट्र के पुत्रों की सेना को उसी प्रकार जला डालेंगे जैसे आग ईंधन को जला देती है। अभिमन्यु की हत्या कराने वाले पापी जयद्रथ को अर्जुन अपने बाणों से मारकर आग ऐसी जगह भेजेंगे जहां मनुष्य का जाना भी संभव नहीं है। आज यदि इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ जयद्रथ की रक्षा के लिए आ जाए तो भी युद्ध में अर्जुन को कोई नहीं जीत सकेगा, उन सबको यमराज की राजधानी में जाना पड़ेगा। अर्जुन आज जयद्रथ को मारकर ही आपको अपना मुंह दिखाना चाहते हैं, इसलिए आप कोई शोक और चिंता मत करो। जिन लोगों में इस प्रकार की बात चली रही थी कि अर्जुन अपने मित्रों के साथ आज महाराज का दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे, भीतर आकर युधिष्ठिर को प्रणाम करके सामने खड़े होंगे, उन्हें देखते युधिष्ठिर ने बड़े प्यार से गले लगाया और मस्तक सूंघकर कहा, अर्जुन आज तुम्हारे मुख के ऊपर जैसी प्रसन्नता है, जैसी कांति है, ऐसा लगता है तुम्हारे में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। जैसे कृष्ण प्रसन्न है वो सारी प्रसन्नता तुम्हारे चेहरे पर आ गई, इससे अनुमान लगता है कि युद्ध में तुम्हारी विजय निश्चित होगी। अर्जुन ने कहा, भैया रात में मैंने केशव की कृपा से एक महान आश्चर्यजनक स्वप्न देखा था। स्वप्न? भगवान कृष्ण भी अनजाने से बन गए। अर्जुन तुमने स्वप्न देखा? भगवान पूछ रहे हैं। हाँ केशव, तो क्या स्वप्न देखा हम सबको सुनाओगे? जरूर सुनाऊंगा। सारा स्वप्न सुनाया, सब लोग आश्चर्य करने लगने लगे, भगवान शंकर को प्रणाम करने लगने लगे। अरे ये तो हमारे आज विजयश्री के लिए बहुत बड़ा आश्वासन मिला है। तदनंतर सब लोग धर्मराज की आज्ञा ली, कवच आदि से सुसज्जित होकर शीघ्रता के साथ युद्ध के लिए निकल पड़े। सबके मन में हर्ष उत्साह था। सात्यकी, कृष्ण और अर्जुन भी युधिष्ठिर को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक युद्ध के लिए उनके शिविर से बाहर निकले आए। सात्यकी और श्री कृष्ण एक ही रथ पर बैठकर अर्जुन की छावनी में गए। वहां जाकर कृष्ण ने सारथी के भांति अर्जुन के रथ को सब सामग्रियों से सजाकर तैयार किया। इधर अर्जुन ने भी अपना दैनिक कर्म पूरा करके धनुष बाण लिए बाहर आए और रथ की परिक्रमा की और उस पर सवार हो गए। फिर श्री कृष्ण और सात्यकी और श्री कृष्ण अर्जुन के आगे जा बैठे। श्री कृष्ण ने घोड़ों की बागडोर अपने हाथ में ली और विजय की सूचना देने वाले शुभ शकुन होने लगे। कौरवों की सेना में अपशकुन होने लगे। उन शकुनों को देखकर अर्जुन सात्यकी से बोले, युयुधान, जैसे ये निमित्त दिखाई दे रहे हैं उनसे जान पड़ता है आज युद्ध में निश्चय मेरी विजय होगी। अतः जब मैं वहां जाऊंगा जहां अब मैं वहां जाऊंगा जहां जयद्रथ मेरे पराक्रम की प्रतीक्षा कर रहा है। मैं सब जानता हूं कौरव इस समय जयद्रथ की रक्षा के लिए अपनी पूर्ण शक्ति लगा देंगे। इस समय राजा युधिष्ठिर की रक्षा का भार मैं आप पर छोड़ता हूं। इस संसार में कोई ऐसा वीर नहीं जो तुम्हें युद्ध में हरा सके। हे सात्यकी, तुम साक्षात कृष्ण के समान हो। तुम पर या प्रद्युम्न पर मेरा बहुत अधिक विश्वास है। मेरी चिंता छोड़कर तुम महाराज युधिष्ठिर की रक्षा करना। जहां वासुदेव वहां मैं हूं। वासुदेव पर कभी विपत्ति नहीं आ सकती, वहां मुझ पर भी कोई विपत्ति नहीं आ सकती। सात्यकी, अच्छी बात है, अब हम युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं और तुम युधिष्ठिर की रक्षा के लिए प्रस्थान करो। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण
नारायण श्रीमन् नारायण।